शांति। सभी तपस्वियों का मधुबन की तपोभूमि में हार्दिक स्वागत है। अच्छा लग रहा है सबको? चारों ओर प्रकृति भी सूक्ष्म वतन बना के बैठी है। लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति बनानी, तपस्या का तेज और तपस्या का बल दोनों धारण करना है। सूर्य की रोशनी और सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश देखो, रोशनी भी देता है और ऊर्जा भी देता है। ये ज्ञान सूर्य की रोशनी सत्य ज्ञान देता है। हमारा विवेक जग जाता है, बुद्धि हमारी रोशन हो जाती। बाबा हम बच्चों को सत्य ज्ञान देता है, विवेक जगाता है, अज्ञान अंधकार खत्म होता है। कदम कदम पर हमें परखना होता है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। भक्ति में भी साधना का पहला स्टेप यही बताते सत असत का विवेक। अगर राइट परखेंगे नहीं तो आगे तपस्या कैसे होगी? क्यों इतना विस्तार से, इतनी गहराई से बाबा हमें समझाते हैं कि पहले तो आत्मा जगनी चाहिए, जग जाए। हम जाग गए, ज्ञान तो सबको देते हैं पर हमारी ज्योति जग गई, हमें परख आ गई। कौन आया है? स्वयं भगवान आए हैं। परिचय तो करोड़ों को दिया है पर जगे कितने? हम जाग गए हैं। दुनिया नहीं जानती है कौन आया है, वो क्या कह रहा है, ये समय कौन सा है, उनको नहीं पता है, हमें पता है। पता है ना कौन आया है? भगवान आए हैं। खुद भगवान रोज हमें समझाते हैं भक्ति में कहते थे तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये प्रैक्टिकल संगम युग में अभी बाबा का पार्ट चल रहा है। जितना ज्ञान गहरा उतना माया की, माया के सूक्ष्म स्वरूपों की परख आती है। परख न माना, वहां ही माया को खत्म कर देना। मम्मा कहती थी कि आपको माया आई है, वो किसी को पता क्यों चले, वहां ही खत्म कर दो। ऐसे नहीं पता तो चला, पता तो चला माया आ रही है, अवस्था डाउन हो रही है, ज्योत हिल रही है, ये तो शिकार हो गए ना। बाबा कहते हैं शिकार नहीं होना है। फरक ना माना, वहां ही दृढ़ता से खत्म कर देना। तो कहेंगे कि जागे हैं। तो आदि से लेकर जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, 2017 तक तो दिया ना, हाँ, संपूर्ण ज्ञान मिल गया, साकार मुरलियों के माध्यम से ज्ञान के हर सत्य को विस्तार से और नए नए तरीके से बाबा ने हमें समझाया है। इतना और कौन समझाएगा, हाँ, और कोई समझाएगा? भगवान इतनी धीरज, प्यार, शुभ भावना से ज्ञान के मूल सत्यों को और प्रैक्टिकल जीवन की हर छोटी मोटी धारणाओं के बारे में हमें बाबा ने समझाया। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, समझा समझा कर कितना समझाऊं और फिर भी इतना समझाए। तो ज्ञान का प्रथम स्वरूप है हम सबके जीवन में कि नॉलेज इज लाइट। ज्ञान एक प्रकाश के रूप में जीवन में आता है। हम कह नहीं सकते हैं कि मुझे पता नहीं है, अब हम ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। हर बात बाबा ने समझा दी है। एक होता है कि इंसान जानता ही नहीं है, पता ही नहीं है, जो भक्ति में हमारा हाल था, पर अब हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। बाबा के लिए कहते हैं भक्ति में कि शिव का डमरू डम डम बाजे, अगम निगम के भेद खोले। वो अभी खोल रहा है, हा? ये बाबा का डमरू है ब्रह्मा बाबा, हा? पूरे आदि मध्यांत के आलोक परलोक के राज बाबा ने बता दिए। मैं नहीं जानता हूं, मुझे पता नहीं है, ऐसा हम अब कह नहीं सकते। और जो ज्ञान स्वरूप है, स्मृति में भी है, तो कोई भी बात में हम दुखी नहीं हो सकते। हम महसूस करेंगे कि दुख जैसी बात ही नहीं, सबका अनुभव है कि बात आई नहीं सामने, प्रॉब्लम आया नहीं और बुद्धि में ज्ञान जवाब दे देता है, सॉल्यूशन दे देता है। हम दुखी हो नहीं सकते, अवस्था बिगड़ नहीं सकती, क्योंकि जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट बाबा ने हमें दी है, तुरंत दिव्य बुद्धि हमें समाधान दे देती है। अब हमारा पुरुषार्थ है, भगवान का काम है ज्ञान देना, रास्ता बताना, विधि बताना। अब हमारा पुरुषार्थ है हमें ज्ञान को गुणों में बदलना है। ज्ञान से ही गुण आते हैं। जब ज्ञान को आचरण में लाते हैं, कर्म में लाते हैं, उस पर मनन करते हैं, ज्ञान गुणों में बदलता है। देखो, बच्चा छोटा है, समझ नहीं होती है ना, उसको जो मिलेगा खुद ही खा जाए, है ना, भी मेरा हिस्सा है, मेरा भाग है। वही बच्चा बड़ा बनता है, समझ आती है कि अब मैं, मुझे और भी मेरे साथ है, बांट के खाए। ज्ञान को रोज अभ्यास में लाकर, उस पर गौर करके, मनन चिंतन करके, मुझे ज्ञान को गुणों में बदलना है। भोजन किया, पेट में भरा, पर डाइजेस्ट करना है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसलिए बाबा लक्ष्य देते हैं हमें कि हमें पंडित नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना है, योगी बनना। योगी बनना माना ज्ञान का स्वरूप बनना, अभ्यास में लाना, आचरण में लाना। और लंबे समय तक ये हमारा पुरुषार्थ जब रहता है, तो वो गुण शक्ति बन जाता। तब कहेंगे नॉलेज इज माइट, ये सेकेंड स्टेज है। रियल नॉलेज इज माइट, सत्य ज्ञान एक शक्ति है। और तब फिर नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ज्ञान कमाई का साधन बन जाता है, क्योंकि जो चीज चरित्र में आ गई, आचरण में आ गई, हमारा जीवन एग्जाम्पल बन जाता है, दूसरों को इंस्पिरेशन देता है। हमारी धारणाओं से कमाई होती है, औरों के लिए जब प्रेरणादायी बन जाएंगे तो कमाई हुई ना, हमें देख औरों का निश्चय बढ़ जाता है, हमें देख लगन बढ़ जाती है, हमें देख हिम्मत आ जाती है उसमें। तो ये क्या हुई? कमाई हुई हमारी। तो देखिए, भट्टी में आए हैं, फुर्सत निकाल कर आए हैं खुद को देखना। हमारे जीवन में ज्ञान किस लेवल से चल रहा है? लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति माना, औरों को भी प्रकाश देना, लाइट माइट की स्थिति माना, खुद की अवस्था बना ले, पर उस अवस्था से सेवा करना है। हमें देखकर उनको सही मार्गदर्शन मिले, अगर इस प्रकार का पुरुषार्थ हम नहीं करते हैं तो आने वाले नए भाई बहने सोच में पड़ जाते कि ये इतने पुराने हैं पर रोज नहीं आते हैं, ये कैसा व्यवहार करते हैं। भल हम कहते हैं कि बाबा को देखो, बाबा को फॉलो करो, पर प्रैक्टिकल तो हम ही दिखाई देते हैं ना, उठते बैठते सेवा करते, प्रैक्टिकल तो हम दिखाई देते हैं। हमारे द्वारा हर क्षण क्या प्रदर्शित हो रहा है, हमारे द्वारा क्या अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए हमारी भी जिम्मेवारी। ये कहकर छूट नहीं जाना है कि बाबा को देखो ना, मुझे क्यों देखते, पर मैं अपने पर अटेंशन दूं ना कि मैं क्यों गलत कम्युनिकेट कर रही, भगवान ने तो मुझे बिठाया ना सामने, तो मेरे हर कर्म द्वारा, चलन द्वारा, चेहरे द्वारा, बाबा कहते हैं ना कि बाबा दिखाई दे, तो ये भी अटेंशन रहे। मेरे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाबा के ज्ञान के बारे में, बाबा के बारे में, यज्ञ के बारे में, श्रीमत के बारे में, कोई कंफ्यूजन ना। खुद कंफ्यूज होंगे तो राइट गाइडेंस नहीं मिलेगा उनको। मुझे क्लैरिटी हो, बाबा सत्य है, ज्ञान सत्य है, समय का सिग्नल सत्य क्लियर है मुझे. एक बार मुरली में बाबा ने कहा था ना कि बच्चा पूछ रहा है कि बाबा मित्र संबंधी बहुत आग्रह करते, शादी के लिए, भोजन के लिए, बाबा मैं क्या करूं. बाबा ने मुरली में ही उत्तर दिया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो ही तो रोज समझा रहा हूं. कौन सा भाषण कर रहा हूं मैं, वो ही तो रोज मैं समझाता. फिर भी बच्चा पूछ रहा है क्या करूं क्या करूं, तो जरूर बच्चे को शादी करने की दिल है, तभी तो पूछ रहा है. वरना भगवान ने तो स्पष्ट आदेश दे दिया है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है पीना है नहीं खाना है, स्पष्ट बाबा ने बता दिया है. वो इतनी स्पष्टता के साथ मुझे स्वीकार करना है. तो बाबा कहते ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका तुम जवाब ना दे सको. दूसरा, दृढ़ता, निश्चय. निश्चय कहीं भी कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं. इतना लॉजिकल बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है, कोई प्रश्न रह नहीं सकता, कोई संशय की बात ही नहीं. और तीसरा, दृढ़ता. मेरी दृढ़ता हो, मेरा लक्ष्य हो. मुश्किल से सत्य हाथ लगा है, आधा कल्प तो मिथ्या ज्ञान अज्ञान में गया, भटकते रहे. सत्य पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सत्य मिल जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं. अब कुछ हमें नया ढूंढना नहीं है, हमें सत्य मिल गया है. अब मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे ज्ञान का हर सत्य जीवन में लाना है. तो हमें कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि अनेकों बातें आती है ना. कहीं कौन सा बाबा आ रहा है और कहां कौन सा आ रहा है, कितनी मतें हैं. बाबा कहते हैं मैं नहीं था तो मेरी एब्सेंस में भी अनेक भगवान बनकर बैठ गए, तो भक्ति में मुंझ गए कि भाई पता नहीं कौन भगवान है. हर कोई भगवान का अवतार अपने आप को समझा रहा है. अब बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी अनेक मत वाले बैठ गए हैं, पर हमारी बुद्धि में ज्ञान इतना स्पष्ट हो कि भल भगवान साधारण तन में आते हैं पर नंबर वन आत्मा के अंतिम जन्म के साधारणतन में, न कि मेरे तेरे जैसे में, ये परख चाहिए। इसलिए लाइट ज्ञान का प्रकाश 70% अवस्था तो ज्ञान से ही बन जाती। देखो ज्ञान मिलते ही आधे प्रॉब्लम खत्म हो गए। जीवन की कितनी अज्ञानता पवित्रता समाप्त हो गई। फिर है जो कड़े संस्कार हैं, आदतें हैं, उनको बदलने के लिए तपस्या चाहिए, योग चाहिए, शक्ति चाहिए, और वो मेरे लक्ष्य पर आधारित रहता है। बाबा जो कहते हैं उसमें से मुझे जो अच्छा लगता है, पसंद आता है, सहज लगता है, वो मैंने धारण कर लिए, बस। ऐसा ही है ना, अब तक देखो हमें जो अच्छा लगता है वो हमने धारण कर लिए। पर भगवान ने जो जो कहा है, मुझे तो उसका स्वरूप बनना है। ऐसे नहीं कि मुझे जो सहज लगे वो धारण कर लिए। हमारी जीवन ब्रह्मचर्य से शुरू हुई, बहुत ऊंची धारणा। दुनिया में इसका कोई सोच भी नहीं सकता है। और बाबा के बच्चों ने ब्राह्मण जीवन का आरंभ पवित्रता से किया, ब्रह्मचर्य से। कितनी शक्तिशाली महान आत्माएं हैं। पर हमारा लक्ष्य क्या है? बाबा का बताया हुआ लक्ष्य क्या है? संपूर्ण निर्विकारी बनना है। विकार का अंश भी न रहे। बाबा तो हमें इतनी ऊंची पढ़ाई और लक्ष्य दे रहा है। मेरा विचार क्या है? नहीं, बाबा क्या कहते। इसलिए मुझे पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य बनाना है। कि विकार का अंश भी क्यों रहे, जब कर्मेंद्रियों से मुझे कोई पाप नहीं करना है, तो मन में भी वो विकार क्यों रखने हैं? मुझे मन को भी साफ करना है, अंदर गंदगी क्यों रहे? नहीं तो वो संकल्पों के रूप में आता रहेगा गंदगी। तो बाबा ने बताया, पर मैंने ठाना, मैंने लक्ष्य बनाया। कि मुझे कोई अंश नहीं रखना, ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप किए, अज्ञान काल किए ना। आंखें निकाली किसी के सामने, हाँ, बड़ी बड़ी करके दिखाई, नाक चढ़ाया कई बातों में, मुंह बिगाड़ा, शब्द कर्म व्यवहार तो बिगड़े, पर हर कर्मेंद्रिय से पाप हुए। अब बाबा कहते हैं हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना है, तो मुझे ये लक्ष्य बनाना होगा कि अब मुझे हर कर्मेंद्रिय से सत्कर्म करना है। देवताओं की महिमा में गाते हैं, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, नयन कमल, हर कर्मेंद्रिय शुद्ध। इसलिए मुझे हर कर्मेंद्रिय से देहाभिमान का त्याग करना है, हर कर्मेंद्रिय में मुझे आत्मभिमानीता का तेज धारण करना है। ये व्यक्तिगत लक्ष्य बनाने बाबा ने अपना कार्य संपन्न कर लिया। उनको जो बताना था, समझाना था, सिखाना था, सावधान करना था, वो बाबा ने कर लिया। बाबा का कार्य संपन्न हो गया। 33 वर्ष साकार में, 50 वर्ष अव्यक्त रूप से पालना दी। हमारी दादियों ने ऑलमोस्ट 50 वर्ष, क्योंकि बाबा के होते तो उन्होंने सेवाएं की ही की, पर बाबा के अव्यक्त होने के बाद तो प्रैक्टिकल जिम्मेवार बनकर इतना बड़ा यज्ञ चलाया। प्रैक्टिकल में पालना दी ना, प्रैक्टिकल में हम आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, कितना प्रबंध भी किया और अपने जीवन से आदर्श बनकर पालना दी, वो भी ऑलमोस्ट संपन्न हो गई। दादियां एडवांस पार्टी में चली गई। इतनी पालना के बावजूद हम किस लेवल पर पहुंचे, हम कहां तक पहुंचे, अपना देखो रिजल्ट। हम सब अपना रिजल्ट देखे। अब अगर मुझे संपूर्ण बनना है तो मुझे ही जागना है। अब वो पालना की आशाएं नहीं रखनी, अब मुझे ही लक्ष्य बनाना है कि मुझे अपनी स्थिति पावरफुल बना, नॉलेजफुल और पावरफुल, ज्ञान और तपस्या। मुझे अपनी स्थिति बनानी है। संगम के अंत में तो पहुंच गए, अब समय की मार्जिन कितनी। भगवान तो अपना सारा परिवर्तन का बैकग्राउंड बना रहा है। देखो, कभी सोचा था कोई ब्रह्मा कुमारी बाबा की बच्ची राष्ट्रपति बनेगी? कहां से भगवान ने ढूंढा, किसको टच किया? कहां वो राय रंगपुर की छोटी सी बहन? हम तो आगे आगे दौड़ते थे कि हम बड़े, भगवान ने काम कहां से करा ली? हम आउट हो गए। ये बताता है वो अपना काम कर रहा है, वो हमारे पर आधारित नहीं है। पर हमारी जिम्मेवारी है, हमने भगवान की इतनी पालना ली है, हमें बाबा को पूरी मदद करना है। अब बाबा हम बच्चों से अपनी संपूर्ण स्थिति की मदद चाहते हैं। ज्ञान का स्वरूप कितना बने, प्रैक्टिकल स्थिति हमने कितनी बनी, संस्कार। बाबा कहते ना, अभी धारण करोगे तो 21 जन्म चलेंगे। इतने पावरफुल मुझे पवित्रता के, दिव्यता के, रूहानियत के संस्कार बना दे। जिस स्थिति से संगम युग पूरा करोगे, उसी स्थिति से आपका सतयुग शुरू होगा। जिस स्थिति से संगम युग पूरा होगा, उसी स्थिति से हमारा सतयुग आरंभ होगा हमारे लिए। हमें बातें नहीं करनी है, प्रैक्टिकल करना। संगम युग प्रैक्टिकल करने का युग है। पूरे ड्रामा में प्रैक्टिकल कब करना है? संगम युग। सतयुग त्रेता तो उसका फल है, प्रारब्ध है। द्वापर कलियुग यादगार है, रित रस में है। पूरे ड्रामा में प्रैक्टिकल कब करना है? बस ये एक जन्म, ये संगम युग में। इसलिए सिर्फ बातें नहीं करते, बाबा को सिर्फ दिलासे नहीं देने हैं, बन जाएंगे बन जाएंगे बन जाएंगे, नहीं। मुझे समय से पहले अभी बनना, अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। जब चारों ओर हलचल और हाहाकार होगा, उसमें क्या पुरुषार्थ कर सकेंगे? अनुभव कर लिया ना कोरोना में, फ्री थे, फुर्सत थी, टाइम था, बैठे भी भगवान की याद में, पर योग कितना लगा। तब महसूस हुआ कि हमारे में क्या है, कोई ताकत नहीं है। ये तो संगठन से सब कुछ चल रहा था, बाबा के घर का वाइब्रेशंस, संगठन की मदद। एक अकेले अपने अपने घर में पुरुषार्थ करने बैठे, कितना एकाग्र हो पाए? हम तो कारण बता देते थे ना, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, जवाबदारी इतनी है, सेवा बहुत है, इसलिए योग नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा चलो, ड्रामा ने चांस दे दिया कि अब फुर्सत ही फुर्सत है, बताओ कितना योग किया, लगा कितना योग। तो समझ में आया कि मेरी लगन में कमी है, मैं लगन लगाऊंगी तो मेरा योग लगेगा। मुझे धुन होनी चाहिए कि अब मुझे अपनी शक्ति वेस्ट नहीं करनी, माइट हाउस बनना है, पावरफुल स्थिति बनानी है। कोई हलचल मुझे चलित न करे तो मुझे लक्ष्य बनाना है। इसलिए शुरू से बाबा ने कहा था, संगठन में रहते हुए भी व्यक्तिगत पुरुषार्थ में रहो, सब कुछ संगठन पर आधारित नहीं कर दो, खुद के पुरुषार्थ में रहो। तो आप संगठन में भी गुमराह नहीं होंगे, खो नहीं जाएंगे, ट्रैक पर रहेंगे। तो माइट हाउस बनना है, हमारा किया करा पुरुषार्थ और सेवा जमा रहनी चाहिए। तो पावरफुल बने। देखो, जिसके पास जमा का खाता बैंक में अच्छा खासा है, तो कोई भी बात आ जाए, खर्च आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, आप घबराएंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, भय नहीं लगेगा, पता है मेरे पास है, मैं इसको ओवरकम कर सकूंगा। जमा का खाता किसका पावरफुल बनेगा? कहते हैं ना, कितना कमाते हैं उससे शाहूकार नहीं बनते हैं, कितना बचाते हैं वेस्ट नहीं करते। आवश्यक खर्च तो करना ही है, पर वेस्ट नहीं करते, बचत करते हैं। कितना खाते हैं इससे बलवान नहीं बनते, कितना हजम करते हैं उससे शक्तिशाली बनते। हम अपने पुरुषार्थ को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, हम तो इतने साल से चल रहे हैं, हम तो इतनी सेवा करते हैं, पर रोज माइनस कितना होता है वो भी मुझे देखना है। जो भी छोटी मोटी गलतियां हमारे रिएक्शन रिएक्टिव जो हमारा व्यवहार है, और बाबा तो कहता है ना कि सेवा नहीं करना ही दिस सर्विस करता है, व्याख्या ही इतनी ऊंची बाबा की। अशांति फैलाना नहीं, अशांत होना ही डिसर्विस कर। तो बाबा की तो कितनी ऊंची क्लियर डेफिनेशंस होती है। इसलिए बाबा कहते हैं, जो भी लीकेजिस है, जहां से शक्ति बह जाती है, वो लीकेज बंद करने, छोटी मोटी कमजोरियां वही लीकेज है। और आप सोचिए कितनी ऊंची धारणाओं से ब्राह्मण जीवन शुरू किया है, ब्रह्मचर्य, जीवन भर अन्न शुद्धि, भक्ति की तरह नहीं कि सोमवार व्रत कर लिया बस 5 दिन छुट्टी, अन्न शुद्धि से छुट्टी, कुछ भी खाओ, ऐसा नहीं है। ये तो लाइफ लॉन्ग धारणाएं है। हाँ, अमृत वेला, भगवान से मिलन मनाना, कितनी पावरफुल बात है। हाँ, रोज ज्ञान योग का क्लास करना, रोज सत्य सुनना, कितना बड़ी बात है। इन ऊंची धारणाओं से ब्राह्मण जीवन हम सब ने शुरू किया, फिर भी हमारे बारे में हमारे साथी लौकिक और अलौकिक हमारे विषय में कौन सी बातें करते हैं? हमारी छोटी मोटी कमजोरियों की बातें करते हैं, ग्लानी की बातें होती, क्योंकि जो नजदीक के साथी हैं वो हमारी छोटी मोटी कमियों को जानते। तो इस हमने सोचा कि इतनी ऊंची धारणाओं का प्रभाव नहीं और छोटी मोटी कमी कमजोरियां ही देखने में आ रही। होती है कि नहीं होती? होती है ना? हमारे लौकिक वाले भी जानते हैं कि ये रोज ओम शांति में जाते हैं, पर हम ही जानते हैं घर आके कितना गुस्सा कर। हमने महसूस किया कि इतनी ऊंची धारणा का प्रभाव नहीं और कमी कमजोरी का ही प्रभाव। और आज 10 साल हुए, 20 साल हुए, 30 साल हुए, ये कमजोरियां तो जा ही नहीं रही है। शायद हमने सोच लिया है कि कोई बात नहीं, इसलिए वो जा नहीं रही। हम उनको निकालने का कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया। छोटे मोटे तो चलता है, चलता है। क्यों बाबा संपन्नता की बात करते? क्योंकि जब तक ये कमी रहेगी संतुष्टता नहीं रहेगी, सदा खुशी नहीं रहेगी। भौतिक रूप से भी देखो, हर कोई सोचते हैं ना कि जो जरूरी है वो हर चीज हमारे घर में हो। हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, फलाना है, बस एक कार नहीं, असंतुष्ट। जो है उसकी खुशी नहीं, जो नहीं है वो ही बार बार बुद्धि में आ रहा है। तो आध्यात्मिक रूप से भी क्यों संपन्न बनने की जरूरत? ये कारण, जहां कमी होगी वहां आपका पावर नहीं रहेगा, स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसलिए बाबा हमें कहते हैं संपन्न बनो और संपूर्ण बनो। भाई हर चीज परफेक्ट रखी है यहां, पर मान लो ये ऐसी है, आप सबका ध्यान कहां जाएगा? कि बाकी तो सब ठीक रखा है पर ये ठीक नहीं है, वही खींचता है। क्यों 16 कला संपूर्ण बनने की बात बाबा करते? एक कर्म भी यथार्थ नहीं होगा, कोई एक बात में हम एक्यूरेट नहीं होंगे, वही दिखाई पड़ेगा। इसलिए मुझे लक्ष्य रखना है कि मेरी हर बात एक्यूरेट, श्रीमत के अनुरूप, हर बात की यथार्थ विधि बाबा ने हमें बताई, उसे ही कला कहा गया। हर चीज विधि पूर्वक करना, उसको लाइट माइट कहते हैं, कि ये सेंसिबल भी हैं और पावरफुल भी, और वो इतना भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि फुल हो जाएगा फिर बहेगा, हमसे भी कब बहेगा, फुल हो जाए। हाँ, इतनी कैपेसिटी में ये ज्ञान योग की लाइट माइट आ जाए तो हमसे बहेगी, वाइब्रेट होगी अपने आप। सूर्य को प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता है कि मैं लाइट माइट दूं, वो है ही लाइट हाउस माइट हाउस, एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट एंड माइट, उनकी उपस्थिति ही लाइट देती है, माइट देती है। हमारा अस्तित्व, हमारी उपस्थिति हर आत्मा को लाइट दे, माइट दे। ये मुझे लक्ष्य बना, तो मैं बन सकूंगी। पालना देने वाले सोर्सेस तो चले गए, अब जो हमारे बड़े हैं वो भी अपनी आयु पर पहुंच गए हैं, शरीरों में कमजोरियां आ गई, इसलिए मुझे ठानना है, मुझे लक्ष्य बनाना है, रोज बाबा के सामने बैठकर बात करना है कि बाबा मुझे बनना है। लगन होगी तो पूरी ताकत से हम पुरुषार्थ करेंगे, तो बाबा की भी मदद मिलेगी। तो चलो हम सब मिलकर लक्ष्य पूर्वक अभ्यास करें, लक्ष्य पूर्वक दृढ़ता से पुरुषार्थ करना, उसको तप कहते हैं, वो तप है। 2 मिनट खड़े हो जाइए सब। हाथ पांव ठीक कर लो, कमर ठीक कर लो, गर्दन ठीक कर लो, रोज 5 संकल्प खुद खुद को रिवाइज करो, याद कराओ।
लाल लाइट कर दे।
मैं स्वयं लाइट माइट मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट शरीर तत्व है मिट्टी है मैं आत्मा शक्ति हूँ ज्योति बिंदु हूँ जितना इस मिट्टी के भान से परे रहूंगी लाइट माइट अनुभव में आएगी बार बार खुद को मिट्टी से देहभान से अलग करते रहिए मैं आत्मा ओरिजिनली पूर्ण शुद्ध आत्मा जितनी पवित्रता उतना तेज धारण होगा जितना डिटैच उतना शक्तिशाली बाबा ने कहा है आसक्ति है तो अशक्ति आती है जितना यहां से डिटैच ऊपर बाबा के पास इतनी पावरफुल स्थिति बन राइट साइड घूम जाइए मैं जब से बाबा की बनी हूँ डबल लाइट बन गई हूँ मैं ज्योति बिंदु आत्मा लाइट के आकार में जब से बाबा की बनी हूँ पापों के बोझ से हल्की होती जा रही पाप आत्मा को पत्थर बना देता है। पाप भूमि से भारी मुझे नए कोई पाप नहीं करने हैं। इस जन्म में किए हुए पाप बाबा को बता देना है, फुल स्टॉप लगा देना। किए हुए पाप से बने हुए पतित संस्कार योग बल से भस्म करने। मैं डबल लाइट राइट साइड घूम जाए, लाइट की फरिश्ता ड्रेस धारण कर अव्यक्त बाप दादा के साथ अव्यक्त वतनवासी बनना है। मुझे लाइट के वतन से लाइट हाउस माइट हाउस बनकर विश्व की आत्माओं को लाइट माइट की किरणें देनी है। मनसा सेवा करनी है, सकाश देना है। प्रैक्टिकली स्नेह और शक्ति की पालना देनी। राइट साइड घूम जाए, मुझे संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनना है। लाइट माइट की स्थिति से अर्थात मेरी शक्तिशाली आत्म स्थिति से